श्रीमद्भागवत को ग्यारह स्तंभ सार आगे बढ़ाएंगे। इसके 34वें श्लोक पर चर्चा करें। श्रीराजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्राह्मण परमात्मनः राजा नंदी ने पूछा, अतः कृपा करके मुझे उन भगवान नारायण के दिव्य पद को बतलाए जो साक्षात परम सत्य तथा हरेक के परमात्मा है। आप मुझसे कहें, क्योंकि आप सभी जन दिव्य ज्ञान में सर्वाधिक दक्ष हैं। ओम ज्ञानतिविराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं श्रीकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणालंका श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण के साथ चर्चा कर रहे हैं, जहाँ नौ प्रश्न पूछे जी महाराज ने और कवि योगेंद्र उनका उत्तर दे रहे हैं। श्री कवि जी, श्री भवे जी, श्री अंतरिक्ष, श्री प्रबुद्ध ये चार प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। और अब श्री पुकलायन जी और कवि अन्य दो प्रश्नों का उत्तर आज सकते। जैसे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, राजा ने प्रश्न किया श्री राजोवाच, क्या प्रश्न था? उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान के विषय में जानना चाहते और उन्होंने नारायण ब्रह्मण और परमात्मा तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया। तो वैसे तो महाराज हमें महान भक्त है, फिर वो ब्रह्म के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, परमात्मा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? उन्हें तो केवल भगवान का वर्णन सुनना चाहते हैं। तो वे इसलिए जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई महान भक्त प्रश्न करते हैं, साधारणतः उनके प्रश्न जन कल्याण के लिए होते हैं। वे प्रश्न इसलिए करते हैं कि जिसके द्वारा सभी का उद्धार हो सके। तो कहना चाहिए कि इस समय ये जो प्रश्न महाराज जी ने किए, तो महाराज जी ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किए, इसलिए कि ताकि लोगों को ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये स्पष्ट हो जाए। अधिकतर लोग ब्रह्म में, परमात्मा में ये भगवान में अंतर नहीं कर पाते। हाँ, जिन लोगों ने प्रमाणिक आचार्यों की शरण ली है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार किया है, उनमें कोई संशय नहीं होता, उनकी उनको स्पष्ट होता है ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से नहीं ग्रहण किया, तो वे लोग फिर मानते हैं कि वही भगवान ब्रह्म ही है, लीन हो जाना है भगवान में, भगवान तो सबके हृदय में है, वही भगवान है, मान नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को स्पष्ट कराने के लिए उन्होंने ये प्रश्न कि जान जाए लोग कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। तो जब ये प्रश्न किया तब श्री पिपलायन जी इसका उत्तर देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न का उत्तर एक एक विभूत भक्त दे रहे हैं, कभी कभी जी दे रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको वही पता था इसलिए वो दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनका अध्ययन वो कर आए थे इसलिए वो दे रहे थे। तीसरा अध्ययन जैसे हम लोग जाते हैं ना, हम लोग तैयार करके जाते हैं और पहले से चार लोग जाएंगे छह लोग उत्तर देने के लिए तो तैयार हो रहा है, एक प्रश्न किया तो तुम देना, मुझे पता नहीं है ये देना तुम देना, ऐसा नहीं था। वे सब बहुत बड़े भक्त हैं, महान इस ज्ञान को है, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न करे जा रहे हैं तो एक एक उत्तर दे रहे हैं। तो अब पिपलायन जी उत्तर देते हैं भगवान के विषय में। वो कहते हैं कि भगवान जो है वो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। जैसे हम लोग जानते हैं गॉड को हम लोग कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो वह कहते हैं कि भगवान ही सृष्टि करता है, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं, और साथ साथ वो सर्वव्यापी भी है और हरेक के हृदय में रहकर उनको मार्गदर्शन भी देते हैं। तो तीनों चीजों का वर्णन उन्होंने किया, भगवान के रूप का, भगवान के निराकार रूप का और भगवान का परमात्मा रूप का। और वो कहते हैं कि भगवान जब सृष्टि बनाते हैं सृष्टि में भी प्रवेश करते हैं और सृष्टि को शक्ति या जीवन प्रदान करते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात को कहते हैं कि इंद्रियां भगवान को जान नहीं सकती। क्यों? ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों को बनाने वाले हैं। जिस चीज को कोई बना रहा है वो अपने बनाने वाले को कैसे जाने, जब तक बनाने वाला उसको शक्ति नहीं देता। तो कहते हैं कि इंद्रिय भगवान को नहीं जान सकती, इतना ही नहीं वो कहते हैं वेद भी भगवान को नहीं जानते। ये आश्चर्य की बात, हम लोग कहते हैं भगवान को कहां से जानना है, वेदों से। तो ब्रह्म ऋषि कहते हैं वेद भी भगवान को नहीं जानते, और इसलिए वे क्या करते हैं, भगवान का अप्रत्यक्ष वर्णन करते हैं। कई बार हम सबके मन में आता है कि वेदों में स्पष्ट क्यों नहीं कह दिया कृष्ण भगवान है बस और कुछ नहीं, इतना घुमा फिरा कर कहा गया है, भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, भागते भी है, नहीं भी भागते हैं, ये सब सीधा वर्णन नहीं है, अप्रत्यक्ष ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं कि क्यों है, क्योंकि वेद भी नहीं जानते हैं भगवान, इसलिए वे भी स्तुति करते हैं भगवान की कि कृपया हमें आप अपना ज्ञान दीजिए। तो हम वेद नहीं जानते तो क्या हमें वेद पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, वेदों में अप्रत्यक्ष वर्णन है, वेदों के ज्ञान को उपनिषदों के द्वारा, उपनिषदों के ज्ञान को पुराणों के द्वारा, पुराणों के ज्ञान को इतिहास के द्वारा, इतिहास के ज्ञान को शिक्षाओं के, आचार्यों की शिक्षाओं के द्वारा हम तक पहुंचाया जाए। इसलिए अगर भगवान को समझना है तो भगवान को समझने के लिए वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हो गए और हमें यही नहीं पता कि भगवान कौन है, उससे कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद जी के पास एक बार आए चतुर्वेदी, चारों वेदों को जानने वाले, प्रभुपाद ने पूछा भगवान कौन है। स्वामी जी भगवान का वर्णन करना इतना सरल नहीं है, भगवान को ऐसे कहा गया है, वैसे कहा गया है। प्रभुपाद ने कही छोटी बच्ची को बुलाई करा, उसको एक कुकी भी हाथ बताओ भगवान कौन है। उसने कहा कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे चार वेदों को पढ़ने का लाभ क्या हुआ चतुर्वेदी जी, जब यही नहीं बता कि भगवान कौन है। तो इसीलिए वेदों की शिक्षाओं को, वेदों के मंत्रों को उपनिषद मंत्र समझाते हैं, उपनिषदों को पुराण समझाते हैं, पुराण की कथाओं, पुराण को भी ज्ञान समझने के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतिहास कथाओं के द्वारा हमको सिखलाते हैं। और फिर उन्हीं शिक्षाओं को, वही वेद की शिक्षाएं, वही उपनिषद की शिक्षाएं, वही पुराणों की शिक्षाएं आचार्य बड़ी सरलता से हमें सरल भाषा में देते। इसलिए जब तक कोई परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं करता, जब तक कोई गुरु को स्वीकार नहीं करता, अपने मन से वो कभी भी भगवान को जान नहीं सकता। हम केवल कल्पना कर सकते हैं भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे। तो इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने समझाई कि वेद भी सीधे भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इस संसार के कारण है। तीन स्तर हैं परम सत्य के, परमात्मेति भगवान की शब्द के। भागवत कहता है कि एक ही परम सत्य तीन रूपों में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, उनको जानने वाला, जैसे कहा जाता है कि क्या भगवान ब्रह्म को जानते हैं तो आनंद नहीं मिलता। अगर परम सत्य के ही तीन रूप है तो ब्रह्म में भी आनंद होना चाहिए, ब्रह्म में भी ज्ञान होना चाहिए और ब्रह्म में शाश्वतता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान परम सत्य के तीन रूप है और परम सत्य के रूप में अज्ञान निरानंद हो नहीं सकता। तो ब्रह्म में भी आनंद है, ब्रह्म में भी ज्ञान है। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान में अंतर क्या है? जब कोई व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार करता है तो वो केवल सत, भगवान के सच्चित आनंद में से सत रूप का साक्षात्कार करता है। इसका अर्थ ये नहीं है ब्रह्म में आनंद नहीं है, इसका अर्थ है उसने आनंद का साक्षात्कार किया, उसका साक्षात्कार केवल सत्ता, इसीलिए ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि सत चित और आनंद, जो सत को प्राप्त करता है केवल ब्रह्म ज्योति तक जाता है, जो चित ज्ञान को आप प्राप्त कर लेता है सत और चित को परमात्मा तक जाता है, जो सत चित आनंद को प्राप्त करता है वो भगवान तक जाता है। भगवान में ही एक ही परम सत्य के रूप है, लेकिन उनके साक्षात्कार अलग अलग लोग करते हैं, उस हिसाब से वो प्राप्त करते हैं। तो भगवान ये जो शब्द है बहुत अच्छी तरह से जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान शब्द क्या है। भगवान तीन शब्द लेते हैं, सो भर शब्द का वो अर्थ देते हैं, वो व्यक्ति जो पालन करता है, जो सभी का पालन करता है। धरण भर शब्द वो जो सबका पालन करता है, जैसे कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनाना एको बहुनाम यो विदधाति कामना, एक व्यक्ति है जो सबकी कामनाओं को पूरा करता है वो भगवान। जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि भर शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो सबका पालन करता है, यह सबका सबका संरक्षण करता है, जैसे कहते हैं कि माता पिता होते हैं और दूसरे संरक्षण करने वाले गार्जियन होते हैं, तो भगवान हर शब्द उनको सूचित करता है। वह शब्द सूचित करता है हाँ, जो मार्गदर्शन दे, जो नेता हो, जो सृष्टि करे, वो गर्व शब्द। और वान शब्द सूचित करता है कि सभी जीव भगवान में है और भगवान सब में है। तो ऐसे ही भगवान शब्द इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, कैसे भगवान सबका पालन करते, किनका पालन करते हैं, भगवान सबका करते हैं, लेकिन विशेषकर अपने भक्तों का पालन। भगवान के लिए कहा गया है कि बाकी तो भगवान की बहुत एक शक्ति है, उससे पालन हो जाता है। जब कोई ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तो वो ये समझता है कि भगवान की कोई शक्तियां नहीं है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो ये समझता है कि भगवान में भौतिक शक्तियां हैं। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है परमात्मा के परे, तो समझता है कि भगवान आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों के साथ। वैसे ये कहा जाता है कि जो भौतिक जगत है, भौतिक शक्ति भगवान से आती है, लेकिन एक दृष्टि में अगर इसको सही ढंग से समझा जाए तो भौतिक शक्ति भगवान से नहीं आती, भौतिक शक्ति भगवान के विस्तार पुरुष अवतार से आगे बढ़ती है। जो भौतिक शक्ति भगवान उसको स्पर्श नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे वो सबका पालन करते हैं, तो अपने भक्तों का पालन करते हैं। साथ साथ मार्ग निर्देशक है, किस चीज की मार्ग निर्देशक कर रहे हैं वो, हम कैसे उन तक जा सकते, और मार्गदर्शन या नेता के रूप में वो हमें हमारी कर्मों का या हमारी भक्ति का फल प्रदान करते। तो भक्ति का फल क्या है, क्या प्राप्त होता है भक्ति से? भक्ति का फल है कि भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कोई कह सकते भगवान तो सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, तो भगवान प्रवेश करते हैं इसका क्या अर्थ है? भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, लेकिन ये जो परमात्मा है इनके कार्य क्या है? भक्ता महेश्वर आप जो कर रहे हैं उसकी अनुमति दे दी, आपके कर्मों का फल दे दिया। लेकिन भगवान प्रेम प्रदान कर, तो भगवान के हृदय में आने का अर्थ क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम की तीव्रता। तो ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को अपना स्वामी अपना मार्गदर्शक स्वीकार कर लेते हैं। भगवान जो भी हमारी इच्छा है उसका फल प्रदान करते हैं, अर्थात भक्ति हमें प्रदान करते हैं। और वो सृष्टा भी हैं, हम लोग भगवान को जानते हैं सृष्टा, तो भक्तों के लिए क्या वो क्रिएट करते हैं? भक्तों के लिए वो उन योग्यताओं को बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे लिए? भक्तों के लिए वो योग्यता बनाते हैं जिसके द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते। बुद्धि योग ये नयांति थे, भगवदगीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योग, बुद्धि योग मतलब भक्ति मैं देता हूं इसलिए जिससे आप मेरे पास आ सकते। ये योग्यता भगवान प्रदान करते। देखिए हमें भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, मुझे मार्ग पता चल गया है कृष्ण तक जाने का। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है, पालन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये जान लीजिए कि देने वाले वही हैं। सज्जन जी भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करता, जब जीव अहंकार में आकर भगवान के द्वारा दिए गए उपहारों को नकार देता है या उनको उपयोग करता है बिना कृतज्ञता के, तो वो निराकारवादी मायावादी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भोग करने लगता है। स्वयं भगवान बनना चाहता है। और जो व्यक्ति सदैव कृतज्ञता में रहता है, सदैव ये जानता है कि सब कुछ भगवान का है, जब चाहे भगवान ले सकते हैं, मेरी योग्यता भी भगवान से आ रही है, वो व्यक्ति कभी निराकारवादी नहीं हो सकता। निराकारवादियों में तो भक्तों में क्या अंतर है? कृतज्ञता। भक्त स्वीकार करता है भगवान की सत्ता को, भगवान के गुणों को, भगवान की कृपा को, और कृतज्ञ हो जाता है। अरे कैसा व्यक्ति जो न स्वीकार करता है न भगवान की शक्तियों को, न भगवान की कृपा को, और न ही कृतज्ञता प्रकट करता है, वो विरोधी हो जाता है। इसके भक्ति मार्ग में भी जब तक हम लोग हैं, जब तक मतलब हमें बने ही रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी थोड़े साल के लिए है, उसके बाद फिर भक्ति मार्ग से कहीं और मार्ग में जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम हैं तो उसका अर्थ क्या है? हृदय में कृतज्ञता। किसके लिए कृतज्ञता? भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। इस मार्ग के प्रति भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भूल जाते भक्तों के महत्व को, भूल जाते भक्ति के महत्व को, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमें भक्ति बड़ी सरलता से मिल गई, हमने जन्म लिया भारत जैसी पावन भूमि में, और बचपन से हम राम कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं, और इस भक्ति भी बड़ी सरलता से हमें प्राप्त हो गई, इसलिए कभी कभी हम उसका मूल्य भूल जाते हैं। इसी तरह भक्तों का मूल्य भूल जाता है, हमारे जीवन में भक्तों का प्रवेश हो जाता है, भक्तों का संग मिल जाता है, हम लोग बहुत आराम से उनसे कुछ बातचीत कर सकते हैं, उनसे कुछ ज्ञान ले सकते हैं, तो हम ज्ञान लेने की बजाय उनसे आध्यात्मिक प्रगति की बजाय फिर हम कुछ भौतिक चीजों की कामना उनसे करने लगे। भक्तों से भौतिक चीजों की कामना करना ये भगवान के प्रति अपराध। भगवान ने भेजा है भक्तों को, लो उपयोग करो इनका, भक्ति पालन करो, जैसे हम कहें, जैसे यहाँ कहा जाए भगवान निर्देश देते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग अपनी प्रतिपूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपराध कष्ट होगा। वो जो आनंद करते हैं वो नहीं रहेगा। हम लोग सुनते हैं भक्ति में ये तो आनंद कंद चला जाए, भक्ति में क्यों चला जाता है आनंद कंद? कृतज्ञता भूल जाता है। जिस दिन व्यक्ति के हृदय से कृतज्ञता चली जाती है, आनंद भी चला जाता है। तो हम लोग बहुत सारे चीजों से आसक्त हो जाते हैं, जान लीजिए आसक्ति और प्रेम ये दोनों शत्रु हैं। जब तक आसक्ति है प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, आसक्ति को त्याग कर ही शिक्षा प्रेम उत्पन्न होता है। आसक्ति हमें प्रेम अल्लाह नहीं देती, प्रेम के अलग अलग भ्राम रूप हमारे सामने प्रकट करती है, हमें लगता है ये प्रेम है, ये आसक्ति का रूप है, क्योंकि बहुत हर ऐसी आसक्ति केवल कष्ट देती है। तो जब तक हम प्रेम के भ्रामक रूप के प्रति आकृष्ट हैं, कष्ट होने वाला ही है। सच्ची प्रेम को समझना है, आसक्ति को त्यागना है, ये दो शत्रुओं को साथ में नहीं रख सकते, आसक्ति और प्रेम। तो इसीलिए वे आगे बताते हैं कि आत्मा भी भगवान के समान शाश्वत है, और अगर सही दृष्टि में भगवान को जानना है, भगवान के विषय में प्रश्न था, तो भगवान को जानना है तो भगवान को सूर्य के समान स्पष्ट देखा जा सकता है, जैसे अब बाहर निकली सूर्य दिखाई देगा, कौन रोक सकता है आपको सूर्य देखने में? लेकिन अगर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, अंधेरा करके अंदर बैठे हैं, तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। फिर बताते भक्ति मार्ग के द्वारा ये आंखें बंद है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। भक्ति के द्वारा हमारी आंखें बंद हैं, तो अगर हम खोलेंगे मतलब हमारे हृदय में बहुत सी अशुद्धताएं, उन अशुद्धताओं को दूर कीजिए, कृष्ण बहुत स्पष्ट सूर्य के समान दिखाई दे। कृष्ण को देखना कोई कठिन नहीं है, कठिन है हमें अपनी आंखें खोलना, कठिन है अपने हृदय को शुद्ध करना। कृष्ण को खड़े जैसे सूर्य तो है, बादल हटाना बहुत कठिन है, सूर्य को देखना कोई कठिन नहीं। सूर्य कहीं से दिख जाता है, लेकिन सूर्य तो बहुत सुंदर उदाहरण भगवान के साथ तुलना की गई। आप कहीं खड़े हो सूर्य दिख जाएगा, जरूरी नहीं कि एक एंगल पर एक जगह खड़े होकर ही आपको सूर्य दिखाई देगा। कहीं पर भी खड़े हैं आप, भारत में कहीं खड़े हो जाइए, सूर्य दिखाई दे जाता है। तो सूर्य को देखना कठिन नहीं, कठिन है आंख खोलना, कठिन है बाहर जाना। तो बाहर जाने का अर्थ क्या है, हमने अपना एक गढ़ बना रखा है। कौन सा गढ़ बना रखा हमने, हमारा गढ़ बना हुआ है जैसे जैसे महल बनाते हैं राजा लोग, किला बनाते हैं, इसलिए बड़ा सुरक्षित किला होता है, शत्रु उस पर आक्रमण ना कर सके। हमने ऐसा किला अपने आसपास बना लिया है, भगवान उसमें प्रवेश ना कर सके। ये हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई है कि ऐसा किला बना लिया जिसमें भगवान प्रवेश ना कर सके। और भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग जो है उस किले में है, उसको बम लगाकर उड़ा देना, चला देना, उसको समाप्त कर देना। तो भक्ति के द्वारा श्री शुक्लायन जी कह रहे हैं कि हृदय में जितनी भी अशुद्धताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और हृदय में अशुद्धता दूर होगी, स्पष्ट दिखे, शीशा होता है मिट्टी पड़ी है आप देख नहीं पा रहे, शीशे की मिट्टी दूर कर दीजिए, स्पष्ट दिखे। तो भगवान को देखना कोई कठिन नहीं है, हृदय की अशुद्धताओं को दूर करना कठिन। इसीलिए स्पष्ट मार्ग होते हुए, स्पष्ट मार्ग शुद्ध भक्तों का संग और कृष्ण की शिक्षाएं सारा होते हुए भी हम कृष्ण को देखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उन चीजों को गंभीरता से नहीं, कृतज्ञता नहीं है, आचार्यों के प्रति कृतज्ञता उनकी कृपा हो जाती है। जब हम आचार्य के प्रति कृतज्ञ, भगवान के प्रति कृतज्ञता अपने आचार्यों तक ले जाते हैं, सही मार्ग पर ले जाते हैं, और आचार्यों के प्रति कृतज्ञता तो हमें भगवान तक ले जाते हैं। ये चक्र है, भगवान है, आचार्य है, हम हैं, इस चक्र में कैसे पहुंचेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान कृतज्ञ। ये विक्रांत जी उत्तर देते हैं कि कैसे भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को देखा जा सकता है। भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन आगे होगा अगले प्रश्न में, जब इसके बाद उन्होंने कर्म का विषय पूछा और कर्म के बाद जो प्रश्न होगा भगवान के अवतारों का, इंद्रियों का होगा, और उसमें बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन भी आएगा कि युग अवतार में चार युगों में कौन कौन से अवतार आते हैं, सतयुग के युग अवतार कौन है, द्वापर के कौन है, त्रेता के कौन है, कलयुग के कौन है, तो ये वर्णन अगले अध्याय में आएगा। तो अब दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, कितने प्रश्न पूछ चुके तीन ना प्रश्न पूछ लिए अब तक मुनि महाराज ने, चार चार, पहले पहले अध्याय दो और अभी तीसरा इस अध्याय दूसरा, पहला कवि जी ने उत्तर दिया, दूसरा हरि जी ने, तीसरा अंतरिक्ष, चौथा प्रबुद्ध और पांचवा पिता, पांच प्रश्न हो, छठा प्रश्न उन्होंने पूछा, छठा प्रश्न उन्होंने पूछा कि कर्म क्या, कर्म योग क्या, इसका वर्णन। तो बड़े संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया और प्रमुखतः निष्काम कर्म का वर्णन उन्होंने किया, निष्काम कर्म योग। तो जहां भी हम लोग योग शब्द की बात करते हैं तो योग का अर्थ क्या होता है कि योग शब्द अपनी मूल अर्थ को खो बैठा है आज के समय। जैसे हम लोग योग आता है हमारे मन में आता है सीधे बैठना, आसन करना, कुछ और उल्टे खड़े हो जाना या जो भी सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना, ये योग आता है। तो वो भी योग है, पद्धति है, लेकिन योग शब्द का अर्थ क्या होता है? योग शब्द ये युज धातु से आता है संस्कृत, और युज धातु का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना है, जुड़ना। तो योग शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ना। जो व्यक्ति कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ता है कर्म योगी कहलाता है, जो ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ता है ज्ञान योगी कहलाता है, जो अष्टांग के द्वारा जो भगवान से जुड़ता है अष्टांग योगी कहलाता है, और जो भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ता है भक्ति योगी कहलाता है। योग मतलब जुड़ना। तो हम अगर ये थोड़ी बहुत आसन इत्यादि करते हैं, व्यायाम करते हैं, इसका भी उद्देश्य भगवान से जुड़ना है। योग सूत्रों को जब दिया गया तो योग सूत्रों में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई गई कि ये सब ठीक है, आप प्राणायाम कीजिए, आप आसन कीजिए, ध्यान धारणा ये सब नियम नियम पालन कीजिए, तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ईश्वर प्राणिमान भगवान को भूल जाना ये योग का उद्देश्य है। तो इसलिए योग शब्द भगवान से जुड़ने के लिए। तब उन्होंने कर्म योग का पूछा तो हम उत्तर दे रहे हैं, अभिहोत्र जी उत्तर देते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति बड़े निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक आ सकता है। जैसे निष्काम कर्म योग की क्या है, निष्काम कर्म योग, तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो उन्होंने कर्म विकर्म अकर्म का वर्णन किया और फिर ये भी कहा व्यक्ति को निष्काम कर्म के द्वारा अपना जीवन संचालित करना चाहिए। और कर्म विकर्म अकर्म ये वेदों से वेदिक साहित्य से हमें समझना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कि व्यक्ति को तीनों चीजें जाननी चाहिए, कर्म विकर्म अकर्म क्या है। तो ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं इसलिए संक्षेप में, कर्म वो है जो भगवान ने शास्त्र में अनुमोदित किए कार्य, उसको कर्म कहा जाता है। उसको करने से कुछ पुण्य मिलता है। विकर्म वो कार्य है जो प्रतिबंधित किए गए हैं शास्त्र, उनको करने से पाप लगता है। और अकर्म वो है जो न तो पुण्य कमाए न पाप कमाए, अर्थात भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए कार्य, आपके साक्षात्कार के लिए किए गए कार्य अकर्म करना। और व्यक्ति को न पाप लगता है न पुण्य बल्कि भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से कर्म विकर्म और अकर्म है। अब कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं? इस जगत में अधिकतर लोग कर्म योग या किसी भी प्रकार की योग की ओर नहीं बढ़ते, अधिकतर लोग भोगों में पड़े हैं। सबसे निचला स्तर जहां व्यक्ति कोई नियम पालन नहीं करता, उसके लिए जीवन मतलब आनंद ही जीवन है। हाव पियो मजा करो, इससे देखा है आगे क्या होने वाला है। चारवा मुनि और कहते हैं ऋणम पीवे यावत् जीवे सुखम जीवे खाओ मजा करो, रोगी घी में खाओ, ऋणम कृत्वा लोन ले लो, ऋतम पीवे खाओ, लेकिन घी घी में खाना मतलब ऐश्वर्य का जीवन जीना होगा। आज के समय में तो विशेषता पहले तो सभी घी में खाते, और कब तक, हम कोई पुराणों की बात नहीं कर रहे हैं, 100 साल पहले, 50 साल पहले हर व्यक्ति 50 साल पहले हर व्यक्ति घी में खाता था। हमें हमारे परिवार में बताया गया था कि पहली बार जब उन्होंने वनस्पति घी वो भी नौकरों के लिए लाते थे तो छुपा कर लाते थे कि देखना है घर के वनस्पति घी लेके जाए। आज तो इतना पब्लिसिटी है तो घी खरीदता ही नहीं सिद्ध घी। तो ऋण कृतम जीवे यावत जीवे सुखम जीवे जब तक जीना है सुख से जीव ले सकते आयु त्यागना तपस्या ये हमारे लिए नहीं बनी है। क्यों खाओ पियो मजा लो ये बहुत निचला स्तर व्यक्ति का है। ऋण कृतम जीवे यावत जीवे सुखम जीवे क्यों बस की भूत से देह से मर जाने वाले जला दिया जाएगा कहाँ आने वाले हो वापस क्यों चिंता कर रहे हो सब चीजों की बस की भूत से देह से पिता पुता रहा खाओ पियो मजा लो। So, ये पहला स्तर जहां व्यक्ति पाप करता है वेदों के नियम का पालन नहीं करता जैसे मन में आता रहने का प्रयास करता है कष्ट। दूसरा स्तर है उसके ऊपर कर्मकांड। कर्मकांड मतलब जहां व्यक्ति वेदों का शास्त्रों का पालन करना शुरू कर देता है लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के भोग्य कर्मकांड करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे करते हैं ये करो ये प्राप्त होगा ये करो तो पूरा बहुत तो वेदों को पालन करने लगता है नियम में आ जाता है। वेद बने ही इसीलिए हैं कि नियमित जीवन दे जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति। क्योंकि जब तक हम भोगों में भगवान की प्राप्ति कहां होगी हम नाम दे देते हैं। देखिए भगवान ने जो बुद्धि भक्ति करने के लिए दी है हम उस बुद्धि का उपयोग करकर अपनी इंद्रिय तृप्ति को भक्ति का नाम दे देते। भक्ति में आकर भी हमारा उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति होता है कैसे मजा करें कैसे आनंद करें और अगर कोई पूछ रहे ये क्या कर रहे भक्ति। एक बार एक ब्रह्मचारी आश्रम में हमारे बम्बई में बीता एक लड़का एक ब्रह्मचारी को ज्वाइन करने आया था आश्रम में रह रहा था। एक दिन वो भूल का गाना गा रहा हमने तो गई क्या करते आश्रम में रहते भूल का गाना गा रहे बहुत ही अच्छी लिए राधा रानी कृष्ण के लिए गा रहे बहुत अच्छा तो राधा रानी को गाने को आप ना मतलब कोई भूल का गाना जैसे कोई हीरो हीरो के लिए गा रही है वो गा रहा है पकड़ा उसको कह रहे नहीं ये तो राधा रानी कृष्ण के लिए गा। सो ये सब हम सब के लिए टेंडेंसी है हम भोग करना चाहते हैं और उसको भक्ति का नाम दे देते हैं अच्छी धुनी। जैसे आप लोग भागवत में सोते हो कोई कहे भाई भागवत में सो क्यों रहे बहुत ध्यान में बड़े ध्यान से सो रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट इधर उधर देखने से ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है इसलिए बड़े ध्यान से आपकी बात सुन अंदर तक जा रही है। सो इंद्रिय तृप्ति ये भक्ति नहीं है और भक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। कर्म कांड में व्यक्ति कुछ करता है जिससे कुछ पाना चाहता है फिर उसके ऊपर आता है कर्म योग क्योंकि अभी तक उसने भगवान से जुड़ने की इच्छा नहीं की। कर्म कांड में भी वेदों का पालन भगवान से जुड़ने के लिए नहीं अपने आनंद के लिए कर रहा है फिर कर्म योग पर आता है जहां उसकी इच्छा है भगवान से जुड़ने की। तो दो प्रकार के वो कर्म योग होते हैं सकाम कर्म एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या है वो भगवान से जुड़ना चाहता है साथ साथ अपने कार्य से भी आ सकता है और कार्य के फल से भी आ सकता है ये सकाम कर्म योग। एक ही अंतर है सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग में व्यक्ति अपने कार्य से भी आ सकता है और कार्य के फल से भी। निष्काम कर्म क्या है व्यक्ति अपने कार्य से आ सकते हैं केवल फल को त्याग और भक्ति क्या है न कार्य से आ सकता है न फल से आ सकता है केवल कृष्ण से आ सकता। निष्काम कर्म योग तो सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म सकाम मतलब कर रहे भक्ति कुछ प्राप्त करना है देवता होते हैं भक्ति करते हैं लेकिन अपने सिंहासन को बनाए रखना चाहते निष्काम कर्म उसको कोई चिंता नहीं है कुछ दो ना कुछ मिले ना मिले जैसे अगर हम लोग यहाँ के संपर्क में देखें तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मंदिर में कुछ कार्य करने आ रहा है, मुझे कुछ कार्य दे दीजिए, तो अब उसको चार पांच चॉइस दी जाए, ठीक है, काम करने के लिए झाड़ू लगाने का कार्य है, गोविंदा का काम है, किचन का काम है, क्या करना चाहूँ, तो नहीं नहीं मैं तो गोविंदा में जाऊँ, अरे किचन विचन नहीं गोविंदा में जाऊँ, अच्छा ठीक है। तो पैसा कितना लोगे, वो कहे कि जो आप ये उससे कुछ नहीं लेना, मैं तो बस मंदिर में कुछ सेवा करना चाहता हूँ, जो आप देखो वो ले करूंगा गोविंदा करना चाहता है, काम में आ सकता है, काम ही करता और कुछ लेना नहीं, वो आप जो चाहे उसका मुझे कोई चिंता नहीं, बस जो वक्त करो कि दे दो ये निष्काम कर एक छोटा सा सकाम का योग का क्या है, काम भी वही चूज करेगा और पैसा भी इतना लूंगा, नहीं इससे कम में होगा नहीं, लेकिन कर रहा है भगवान के मंदिर में सकाम निष्काम कर्म योग के बाद फिर आगे चलते हैं जहां ज्ञान योग आता है। ज्ञान योग मतलब अब उसकी रुचि चीजों में रुचि नहीं रह गई, कार्य निधि इत्यादि को ज्ञान चाहता है, भगवान का विषय जानना चाहता है, ज्ञान योग की ओर बढ़ता है, लेकिन अभी तक सेवा भाव कृतज्ञता उतनी उत्पन्न नहीं, और फिर जब आगे बढ़ता है तो भक्ति की ओर जाता है। तो ऐसे ये कर्मों का सिद्धांत है, तो हम लोग धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते हैं, कर्म कैसे करने चाहिए, हम लोग जो भक्ति में आ गए हैं ये जान लेना चाहिए कि हमारे भक्ति नहीं करेंगे तो कोई कर्म हमें छोड़ने वाला नहीं। उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक बछड़ा होता है, हजारों गायें चल रही हैं, बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, छोटा बछड़ा होता वो कभी छोड़ता नहीं, ऐसा नहीं वो कहीं चला जाता है, काम में माँ के लिए ढूंढता, वो एकदम माँ के पीछे पीछे चलता, ऐसे ही कर्म है, छोटे वाले नहीं आपके पीछे पीछे चलते, इसीलिए हमें कर्मों को शुद्ध करना सीखना है। जब भक्ति करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए, कर्म की बात आ रही है तो कैसे करने चाहिए, हमें शेर की तरह कार्य करने चाहिए, शेर मतलब क्या है, धार पर नहीं रहना चाहिए, शेर की तरह कार्य करने का क्या है, शेर कैसे कार्य करता, शेर जब शिकार पे जाता है, शेर का कार्य क्या है, शिकार करता, और तो कुछ कार्य करता नहीं है, राजा है खाली बैठा रहता है, एक प्रवचन में बताते हैं कि शेर राजा है, लेकिन कैसा राजा है, उसको भी रोज भोजन नहीं मिलता, रोज काम नहीं कर सकता, ज्यादा भी मिलता नहीं है उसको, तो कहते हैं इस बात कि कैसा राजा है, जंगल का राजा है, लेकिन उसको शिकार करना होता है मगर वो रोज नहीं मिलता, उसको कई दिन भूखा रहता है, फिर उसके बाद भूखा शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो कई दिन भूखा रहता है फिर उसको मिलता है, प्रकृति का नियम है तो राजा हो गए, लेकिन मिले को प्रकृति के नियम के अनुसार, इसलिए जब जाता है तो कैसे करते, सबसे पहले पूरे हृदय से, ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर रहा है हिरण को पकड़ने के लिए, ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला भगवान जाने, नहीं पूरा हृदय से अपनी योजना बनाता है, देखता है, आपने देखा है हिरण का शिकार करते हुए ध्यान रखेगा, धीरे से आवाज नहीं करेगा, फिर एकदम झपट्टा मारेगा, तो बड़े हृदय से पूरा हृदय लगाता है, हरे हर रोज जब भी शिकार करता है पूरा हृदय लगाता है, रोज भी ढूंढने जाता है, दिखता नहीं है वो अलग बात है, कभी भाग जाता है हिरण, कभी दिखता ही नहीं है, बहुत ही भूखा रहता है, तो एक तो बहुत हृदय से करता है और दूसरा पूरी शक्ति लगाता है, शेर ऐसा नहीं है कि अरे जो छोटा सा हिरण है उसको ऐसे मारा मर जाए, पूरी शक्ति से उसके ऊपर आक्रमण करता है, चाहे जो भी कार्य हो, इस शेर के दो अच्छे हृदय से और पूरी शक्ति से भक्तों को ऐसे कार्य करना चाहिए, शेर की तरह पूरे हृदय से, अरे ठीक है हो गया नहीं हुआ क्या कर सकते, जन्माष्टमी आ रही है बहुत सारी सेवाएं हैं, कलेक्शन है, हो गया नहीं होगा, उनका उनका उत्सव हो जाए, या मैं और कहीं में सेवाएं करनी है, हो गया ठीक है, नहीं पूरे हृदय से और दूसरा पूरी शक्ति से। सो हृदय भी सेवा में हो, इंद्रिया भी सेवा में, वैसे कार्य करना चाहिए। तो अब आगे वो बताते हैं कि हमें ऐसे कार्य करने के लिए एक प्रमाणिक गुरु को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार बहुत है। अहंकार क्या करता है? अहंकार गांठें बना देता है। ये कहते हैं कि गांठों को अगर हमें काटना है अहंकार के द्वारा, जो गांठें समझते हैं आपको, गांठ कहते हैं रजनी स्थान, गंधर्वी खान, गंधर्वी ग्राम, जहां राधा और कृष्ण के कपड़ों में गांठ बांधी गई। तो गांठ हमारे अंदर के हृदय में बहुत सारी है। दुर्भाग्य से राधा कृष्ण से नहीं बन रहे हैं हम लोग, कि गांठ हमारी राधा कृष्ण से बनी हुई है। हमारे अंदर हृदय में क्या गांठ है? आसक्ति की, भोग की, बढ़ती जाती है एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतनी सारी गांठे हैं। इसीलिए भागवत कहता है यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधना तलवार चाहिए। कौन सी तलवार चाहिए? यदनुध्यासिना भगवान के स्मरण की। इसीलिए कोन कुरियात कथा रखे, ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसको कथा में रखी नहीं होगी? भागवत प्रश्न पहले ही तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन ग्रंथियों को काटें। तो गुरु से कैसे हटेंगे ग्रंथियां, तो बताते जब गुरु से दीक्षा ग्रहण कीजिए और फिर विग्रह सेवा में लगे। और पूरा विग्रह सेवा का वर्णन कर रहे हैं, कैसे विग्रह सेवा करनी चाहिए, कैसे इन ग्रंथियों को काटने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और कैसे सारा चीजें इकट्ठा कीजिए, और कैसे पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए। विग्रह सेवा में कई चीजें होती है, अभिगमन इत्यादि, जहाँ अपने आप को पहले तैयार किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, भूत शुद्धि कहते हैं, फिर उसके बाद भगवान का शुद्ध शोपचार इत्यादि भगवान की पूजा प्रारंभ। तो वो कहते हैं सर भगवान की पूजा कीजिए, विग्रह इष्ट अपने इष्ट देव, अतः जो भी आपको रूप बहुत प्रिय है उनकी पूजा कीजिए। और कैसे करना चाहिए? वो कहते हैं कि जब विग्रह सेवा कर रहे हो, हमारा भाव होना चाहिए पूरी तरह एक शाश्वत सेवक के भाव में रहे, अहंकार ना हो। उस समय भी देखो मैं कितना अच्छा ड्रेसिंग कर रहा हूँ, आज मैंने जो ड्रेसिंग किए पक्का पर्दा खोलते ही लोग कहेंगे वाह वाह शाश्वत सेवा। अच्छा हो ना हो, आप सेवक हैं, आप सेवक हैं, उस भाव में हमें करना चाहिए। और फिर कहते हैं जो भगवान का महाप्रसाद होता है, जैसे गा रहे हैं या किसी जो भी महा है उसको ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है तो धीरे धीरे भगवान को सर्वत्र देखने का अभ्यास करता है। भक्ति एक मार्ग है जिसके द्वारा हमारे जितने भी कर्म हैं तो वो कर सकते। भक्त को क्या चाहिए? शुद्धता। किन चीजों में शुद्धता चाहिए? काया की शुद्धता, शरीर को शुद्ध रखना है। लेकिन भक्त का अर्थ नहीं है कि गंदे पड़े रहें, कपड़े गंदे हों, नहाए नहीं। अरे हम लोग बहुत व्यस्त हैं और कहा गया है ये सब, भगवान का जप करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। काया में शुद्ध होना, दूसरा विचारों को, विचारों में शुद्ध होना, तीसरा हमारी बोली में शुद्ध होना, जो हम बोले तो शुद्ध हो, और चौथा हमें हृदय में करना चाहिए। जब तक करुणा नहीं है हृदय में भक्त नहीं, भक्त मतलब पत्थर हृदय भक्त हो ही नहीं सकता। फिर कहा ये बड़ा पत्थर हृदय भक्त है, भक्त नहीं, भक्त मतलब करुणा। इसीलिए अगर हमारे हृदय में करुणा है, हमारे हृदय में हम शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी वाचा शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध है, हमारी माया शुद्ध है, ये बहुत आवश्यक है भक्ति के लिए। शरीर को क्यों शुद्ध रखना चाहिए, कोई कह सकता है भगवान की भक्ति मन से होती है, शरीर को गंदा रखा तो क्या प्रॉब्लम है, शरीर मंदिर है, भगवान को आपने विराजमान किया है, भगवान का मंदिर गंदा कैसे रख सकते। शरीर शुद्ध, विचार शुद्ध, मन शुद्ध हो और उसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं श्री अरुणभद्र जी। अब अगले अध्याय में श्री गोविंद जी जय श्री शुक्राय जय श्री अगले अध्याय में कल चर्चा करेंगे। ध्रुविन जी जो अगले नवयोग करने से है, वे अवतारों का वर्णन करेंगे, लीलाओं का, और विशेष करके हम लोग वर्णन सुनेंगे युग अवतार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।